मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 22 फरवरी 2018 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट में आइए हम लोग बात करते हैं कि कैसे अपनी सीमाओं को तोड़ा जाए। फ्रेंड्स आपको ध्यान होगा कि कल मैंने आपसे जो थोड़ी बातें की थी उसके तहत मूल भावना यही थी कि असंभव काम को भी किया जा सकता है, कठिन की तो बात ही अलग है, बशर्ते कि हम उसे करने में लग जाएं और उसके प्रति जितना ज्यादा हमारा आकर्षण होगा उतनी ही हमारी ऊर्जा जागृत होगी और जो जड़ ऊर्जा है जो हमें एक जगह से हिलने नहीं दे रही है वह उतनी कमजोर पड़ेगी। आप उसे कह सकते हैं एक प्रकार से आकर्षण की शक्ति। और ये जो आकर्षण की शक्ति होती है वो बहुत बहुत अद्भुत होती है दोस्तों। ये आकर्षण की तो शक्ति होती है जो समुद्र में ज्वार भाटा पैदा कर देती है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। और वो आकर्षण की शक्ति ही तो है कि सूर्य के चारों तरफ अलग अलग ग्रह अपने निश्चित पथ पर परिक्रमा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको लगेगा कि जो काम करने वाली जो चीज है, अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो वह गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो आइए अब हम उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि यह जो विषय है शायद बहुत उपयोगी विषय है और बहुत जरूरी भी। मित्रों आज के इस अपने लाइफ मैनेजमेंट के विषय को मैं नाम देना चाहूंगा अपनी सीमाओं को तोड़ना। देखिए मैं जानबूझकर यहां अपनी सीमाओं को बढ़ाना शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। बढ़ाना और तोड़ना में मित्रों बहुत फर्क है। सामान्य तौर पर तो हमें यही लगता है कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक चीजें बढ़ेंगी कैसे, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए ठीक है कि मेरे खेत हैं, खेत में मेड़ बनी हुई है और मैं अपने इस खेत को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे उस मेड़ को तोड़नी पड़ेगी। ठीक है, यहां तो तोड़ने की बात समझ में आ गई कि तोड़े बिना मेरा खेत बड़ा नहीं होगा। लेकिन यदि मैं उसी खेत को न बढ़ा करके मैं अपने टोटल खेत के क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहता हूं तो क्या आपको नहीं लगता कि मैं उस मेड़ को ज्यों का त्यों बना रहने दूं और जमीन कहीं और खरीद लूं या उसके बगल वाली जमीन खरीद लूं लेकिन मेड़ को बने रहने दूं, तो मेरी खेती का क्षेत्रफल बढ़ गया, जमीन का क्षेत्रफल बढ़ गया। तो यहां दोनों में फर्क है। जरूरी नहीं कि बढ़ाने के लिए हम तोड़े ही, और ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि तोड़ने में विध्वंस दिखाई देता है, नष्ट करना दिखाई देता है। और मित्रों ऐसा कौन होगा जो विध्वंस से न डरता हो, नष्ट करने से घबराता न हो, क्योंकि लगता यह है कि हम अभी जो है उसे नष्ट तो कर देंगे लेकिन क्या पता कि फिर कुछ रच पाएंगे कि नहीं, बना पाएंगे कि नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और पाने के चक्कर में हम जो हमारे हाथ में है उसे भी खो बैठे। तो इसलिए मित्रों जो तोड़ना है वो थोड़ा सा ज्यादा कठिन काम होता है, यानी कि वह ज्यादा साहस की मांग करता है और ज्यादा ऊर्जा की मांग करता है। और मुझे ऐसा लगता है मित्रों, हो सकता है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर ही लगता हो और आप सब मेरी इस बात से सहमत न हो, कि जो सही विकास है वो कहीं ना कहीं तोड़ने में है। देखिए विकास बढ़ना क्रमशः भी होता है और यूं कह लीजिए कि वो धीरे 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 होता ही है, यहां तक कि अगर मैं कुछ न भी करूं तो कुछ ना कुछ विकास तो होता ही चला जाएगा क्योंकि समय अपने ढंग से उन चीजों को बढ़ाता चला जाएगा। तो हो सकता है कि मेरा जो विकास हो रहा है उसमें मेरा अपना कोई योगदान न हो, मेरा कोई रोल न हो, लेकिन फिर भी मैं बढ़ता चला जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आप सरकारी तंत्र में एक बार चले जाते हैं तो आप देखिए कि आप 10 साल पूरा कर लेंगे तो ये प्रमोशन मिल जाएगा, बशर्ते कि कुछ गड़बड़ सड़बड़ आपने न किया हो, 15-20 साल में ये हो जाएगा और रिटायरमेंट तक ये हो जाएंगे, तो आपका विकास होता चला जा रहा है ना। तो कुछ विकास तो समय के अनुकूल होते ही चले जाते हैं, हम कुछ करें या ना करें, बस जो सामान्य सी अपनी चीजें हैं उनको बस करते रहें। लेकिन जो तोड़ना होता है मित्रों, तोड़ने के बाद जो विकास होता है वह अद्भुत होता है, वह लाइफ में एक तरीके से जंप के जैसा होता है कि बिल्कुल आपके अंदर उछाल आ जाता है और आश्चर्यचकित रह जाते हैं आप खुद भी और दूसरे देखने वाले भी कि अरे ये क्या हुआ। ये अचानक इतना सब कुछ कैसे बदल गया, जैसे कि कोई चमत्कार हो गया हो। मित्रों, मैं यहां मैं बढ़ाने पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं तोड़ने पे बात कर रहा हूं, राइट। इसका आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इसका आधा वक्त केवल बढ़ाना और तोड़ना इसी की व्याख्या करने में ले लिया। तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होती है मित्रों? साधनों की जरूरत नहीं होती है। देखिए, तोड़ने के लिए सबसे पहले जो जरूरत होती है वह होती है मानसिक शक्ति की, मानसिक क्षमता की। जैसे मान लीजिए कि एक, चलिए मैं एक सामान्य सा उदाहरण दूं कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं और वहां बहुत सी जमीन सड़क के किनारे जो दुकान बने हुए उन लोगों ने ऑक्यूपाई कर ली है, अनऑथराइज्ड तरीके से उस पर अधिकार कर लिया है, यहां तक कि अनऑथराइज्ड तरीके से तैयार करके उस पर अपने अपने मकान भी बना लिए, किसी ने दुकान खोल ली है, राइट। अब आपको साफ लग रहा है कि यह अवैधानिक काम हुआ है और इसे तोड़ना है, जो भी इस पर बना हुआ स्ट्रक्चर है, इन सब स्ट्रक्चर्स को तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए तो आपके पास साधन है, अमला भी है, आपके पास क्रेन है, आपके पास बुलडोजर है, आपके पास अधिकारी हैं, आपके पास पुलिस है, सब कुछ है। लेकिन क्या इसी से आप तोड़ लेंगे? क्या इसी से तोड़ लिया जाता है, टूट जाते हैं? नहीं टूटते हैं। तोड़ने के लिए किस चीज की जरूरत है? दोनों स्तरों पर, राजनैतिक स्तर पर भी और प्रशासनिक स्तर पर भी, क्योंकि हमारे यहां का सिस्टम ऐसा है कि बिना राजनैतिक इच्छा शक्ति के प्रशासन उतनी शक्ति नहीं जुटा पाता है, तो इसीलिए मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं। तो साधन है लेकिन क्या नहीं है? मानसिक ऊर्जा नहीं है, मानसिक शक्ति नहीं है। और जैसे ही यह शक्ति मिलती है, मानसिक ऊर्जा, दोनों क्षेत्रों को, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र को भी और प्रशासनिक क्षेत्र को भी, तब आप देखिए कि फिर साधनों का आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि साधन ही सब कुछ नहीं है। साधन है लेकिन यदि मानसिक ऊर्जा नहीं है तो वो साधन बेकार पड़े रह जाएंगे, वो आपके लिए कुछ कर नहीं सकेंगे। साधन तो अपने आप में निर्जीव है, नाम ही है साधन, उसका आपको उपयोग करना पड़ेगा, वो अपने आप में कुछ नहीं कर पाते हैं। और मित्रों, मान लीजिए कि आपके पास साधन ही नहीं है, तब आप क्या करेंगे? मित्रों, ये बात आपको थोड़ी सी शायद अव्यवहारिक सी लगे, विश्वसनीय न लगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनके पास मानसिक ऊर्जा होती है, डिटर्मिनेशन आपको इस दूसरे रूप में कह लीजिए, वो अपने आप साधनों को ढूंढ लेते हैं, वो साधनों के मोहताज नहीं होते, रास्ता उनको मिल जाता है। आप देखिए कि जब नदी अपने छोटे से स्रोत से अपनी यात्रा की शुरुआत करती है तो आपको क्या लगता है? पतली सी धारा रहती है, लेकिन जब वो चलना शुरू करती है तो दूसरी धाराएं यहां आकर के उसमें मिलती चली जाती हैं और वो गंगा बनती चली जाती है। आप कभी गंगा को जहां से वो निकली है जाकर के देखिए, आप नर्मदा जहां से निकली है उसे जाकर के देखिए। मैंने देखा है, नर्मदा जी हमारे अमरकंटक से निकली है और गंगा जी जो है ना गोमुख से निकली हुई है, जाकर के देखिए तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये गंगा आगे चल करके कितना विशाल रूप ले लेती है। क्योंकि जब निकल जाते हैं आप, और लेकिन पूरी ऊर्जा से, पूरे प्रवाह के साथ, पूरी क्षमता के साथ, क्योंकि अगर आपका ही प्रवाह मंद होगा तो याद रखिए फिर आप दूसरों को आकर्षित नहीं कर सकेंगे, दूसरों का सहयोग नहीं प्राप्त कर सकेंगे। जब आप में ताकत होगी तो आप देखिए कि दूसरे आकर के आपसे जुड़ते चले जाएंगे, कारवा बनता चला जाएगा, साधन मिलते चले जाएंगे। आप कभी पढ़िए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की को कैसे इतना बड़ा खड़ा किया गया है और मदन मोहन मालवीय जी ने कैसे उसके लिए साधन जुटाए हैं। तो दोस्तों, याद रखिए कि अगर मानसिक क्षमता है तो वो जो क्षमता है आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा पैदा करेगी और वह ऊर्जा फिर एक ऐसा अपने अंदर आकर्षण की शक्ति पैदा करती है कि वो अपने आप साधनों को खींच लेती है, आपको साधनों के पास जाना नहीं पड़ता। हालांकि आपको ये सारी बातें बड़े वायवीय सी लग रही होंगी, अब्स्ट्रैक्ट सी लग रही होंगी, अविश्वसनीय सी लग रही होंगी कि ठीक है, उपदेश देने वाली बातें हैं, लोग कहते ही रहते हैं, उपदेश देते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा होता थोड़ी है। आपको इसलिए ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होता है क्योंकि आपने किया नहीं है, करके तो देखिए, लेकिन ईमानदारी के साथ, यानी कि सोच लिया और समझ लिया कि बस हमारी मानसिक शक्ति तो तैयार हो गई है। मित्रों, सोचना तो उसका बिल्कुल आरंभिक स्तर है, आरंभिक बिंदु है कि आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, बस दैट्स ऑल। सोचने से कुछ नहीं होता है, उस सोचने को गर्माहट में बदलना पड़ता है, उसको गर्म बनाना पड़ता है, उसको ताप देना पड़ता है, उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना पड़ता है, दृढ़ता पैदा करनी होती है, उसके अंदर एक्शन लाना होता है, तब जाकर के कहीं ऊर्जा पैदा होगी। सोचने से आग नहीं जलती है, आग जलाने से जलती है। मित्रों, पत्थर में भी तो आग होती है, बांस में भी आग होती है। कैसे गर्मी के दिनों में जंगलों में आग लग जाती है, ये मत समझिए कि किसी ने बीड़ी सुलगाई और जंगल में सूखी घास पर फेंक दी और आग जल गई, लग गई, ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी होता है, लेकिन बांस जब आपस में रगड़ खाते हैं तो उस रगड़ खाने से फिर चिंगारियां निकलती हैं, और पता लगा कि वही चिंगारी सूखी हुई घासों या पत्तों को पकड़ करके एक इतने बड़े लपटों में तब्दील हो जाती है कि आसपास की सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। एक छोटी सी चिंगारी, वो कोई बड़े रूप में पैदा नहीं होती है। तो जब बांस में जब आग छिपी हुई है, तो आप सोच सकते हैं कि हम तो सब जीवंत तत्व हैं, हमारे पास चेतना है, हम सब जी रहे हैं। जैसे बांस में वो आग दिखाई नहीं देती है, उसे निकालना पड़ता है मित्रों, उसी तरह से हमारे अंदर भी जो ऊर्जा है वो दिखाई नहीं देती है, उसे निकालना पड़ता है। और ये निकालने का जो क्रम है मित्रों, ये सीमाओं को तोड़ने से होता है, सीमाओं को बढ़ाने से नहीं। और जब हम तोड़ लेते हैं और फिर लगे रहते हैं, तो सीमाएं तो फिर अपने आप बढ़ती चली जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। नमस्कार।